सील निरूपण और चरित्र चित्रण का शेष अंश पृष्ठ 82। गृह नीति की दृष्टि से विभीषण शत्रु से मिलकर अपने भाई और कुल का नाश करने वाले दिखाई पड़ते हैं, पर और विस्तीर्ण क्षेत्र के भीतर लेकर देखने से उनके इस स्वरूप की कलुषता प्रायः नहीं के बराबर हो जाती है। गोस्वामी जी ने इसी विस्तृत दृष्टि से उनके चरित्र का चित्रण किया है। वे भीषण राम भक्त थे, अर्थात सात्विक गुणों पर श्रद्धा रखने वाले थे। वे राम के लोक विश्रुतशील शक्ति और सौंदर्य पर मुग्ध थे। भाई के राज्य के लोभ के कारण वे राम से नहीं मिले थे। इस बात का निश्चय उनके बार बार तिरस्कृत होने पर भी रावण को समझाते जाने से हो जाता है। यदि उन्हें राज्य का लोभ होता तो वे एक ओर तो रावण को युद्ध के लिए उत्तेजित करते, दूसरी ओर भीतर से शत्रु की सहायता करते। पर वे रावण की लात खाकर खुल्लम खुल्ला राम की शरण में यह कहते हुए गए, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहूं जनि खोरी। लोभवश न सही शायद विभीषण भाई के व्यवहार से रूठकर क्रोधवश राम से जा मिले हो। इस संदेह का निवारण राम के लात मारने पर विभीषण का कुछ भी क्रोध न करना दिखाकर गोस्वामी जी ने किया है। लात मारने पर विभीषण इतना ही कहते हैं, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। फुटनोट 1, अर्थ वाल्मीकि का वर्णन भी इसी प्रकार का है। फुटनोट समाप्त। इस स्थल पर गोस्वामी जी का चरित्र निर्वाह कौशल झलकता है। यदि यहाँ थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती, विभीषण क्रोध करते हुए दिखा दिए जाते, तो जिस रूप में विभीषण का चरित्र वे दिखलाया चाहते थे वह बाधित हो जाता। अधिकतर यही समझा जाता कि क्रोध के आवेश में विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा। कवि ने विभीषण को साधु प्रकृति का बनाया है। हरी हुई सीता को लौटाने के बदले रावण का राम से लड़ने के लिए तैयार होना असाधुता की चरम सीमा थी, जिसे विभीषण की साधुता न सह सकी। गोस्वामी जी का पक्ष यह है, विभीषण की साधुता औसत दर्जे की थी। वह इतनी बढ़ी नहीं थी कि राम द्वारा दिए हुए भाई के राज्य की ओर से वे उदासीनता प्रकट करते। पैराग्राफ चेंज। सुग्रीव का चरित्र तो और भी औसत दर्जे का है। न उनकी भलाई ही किसी भारी हद तक पहुंची हुई दिखाई देती थी, न बुराई ही। राम के साथ उन्होंने मैत्री की भी और राम का कुछ कार्य साधन करने के लिए पहले ही बड़े भाई का राज्य पाया। पर जैसा कि साधारणतः मनुष्य का स्वभाव, कोष्ठक में बंदर का स्वभाव कहने से और कुछ कहते ही नहीं बनेगा, कोष्ठक बंद होता है, वे सुख विलास में फंसकर राम का कार्य भूल गए। जब हनुमान ने चेताया तब वे घबराए और अपने कार्य में दंतचित हुए। अब तक जिस चरित्र का चित्रण हुआ है वह एक व्यक्ति का चित्रण है। इसी प्रकार किसी समुदाय विशेष की प्रकृति का भी चित्रण होता है। जैसे स्त्रियों की प्रकृति का, बालकों की प्रकृति का, स्त्रियों की प्रकृति की जैसे तद्रूप छाया हम मानस के अयोध्या कांड में देखते हैं, पृष्ठ 83। वैसी छाया के प्रदर्शन का प्रयत्न तक हम और किसी हिंदी कवि में नहीं पाते। नीची श्रेणी की स्त्रियों के सामने बहुत कम प्रकार के विषय आते हैं, पर मनुष्य का मन ऐसी वस्तु है कि अपने प्रवृत्ति के अनुसार लगे रहने के लिए उसे कुछ न कुछ चाहिए। वह खाली नहीं रह सकता। इससे वे अपने राग द्वेष के अनेक आधार यों ही बिना कारण ढूंढ कर खड़ा करती रहती है। यदि वे चार आदमियों के बीच रख दी जाए तो हम बहुत थोड़े दिनों में देखेंगे कि कुछ तो उनके अनुराग के पात्र हो गए और कुछ द्वेष के। मूर्ख स्त्रियों की यह विशेषता ध्यान देने योग्य है। अपने लिए राग और द्वेष का पात्र चुन लेने पर वे अपने वाक विलास और भाव परिपाक के लिए राग और सहयोगी ढूंढती है। मंथरा का इसी अवस्था में हम पहले पहल दर्शन पाते हैं। न जाने उसे क्यों कौशल्या अच्छी नहीं लगती, कैकेयी अच्छी लगती है। फुटनोट 1, अर्थ: वाल्मीकि ने उसे कैकेयी के मातुल कृत की दासी कहकर कारण का पूरा संकेत दिया है। इस प्रकार की दासी का व्यवहार घर के और लोगों के साथ कैसा रहता है, यह हिंदू गृहस्थ मात्र जानते हैं। पीर गोस्वामी जी ने कारण का संकेत न देखकर उसकी प्रवृत्ति को मूर्ख स्त्रियों की सामान्य प्रवृत्ति नारी चरित्र के अंतर्गत रखा है। राम की अभिषेक की तैयारी देखकर वह कूढ़ जाती है और मुंह लटकाए कैकेयी के पास जा खड़ी होती है। कैकेयी को उसके अनुराग का पता चाहे रहा हो, पर अभी तक द्वेष का पता बिल्कुल नहीं है। वह मुंह लटकाने का कारण पूछती है, तब उतरु देई नहीं लेही उसासु, नारी चरित करी ढाड़े आसु। हसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दिन लखन सिख असमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छड़ई श्वास करी जनु सापिनी। उसकी इस मुद्रा से प्रकट होता है कि उसके अपने द्वेष का आभास इसके पहले कैकेयी को नहीं दिया था। यदि दिया भी रहा होगा तो बहुत कम। जल्दी उत्तर न देने से यह सूचित होता है कि जो बात वह कहना चाहती है वह कैकेयी के लिए बिल्कुल नई है, अतः उसे सहसा नहीं कह सकती। किस ढंग से कहे यह सोचने में उसे कुछ काल लग जाता है। इसके अतिरिक्त किसी के सामने अब तक न प्रकट किए गए दुख के वेग का भार भी दबाए हुए है। इतने में गाल बड़ तोरे इस वाक्य से जी की बात धीरे धीरे बाहर करने का एक रास्ता निकलता है। वह अपनी वही मुद्रा कायम रखती हुई कहती है, कतसिक देई हम ही कोमाई, गाल करब के ही कर बलु पाई। किसका बल पाकर गाल करूंगी? इसका मतलब यही है कि मुझे एक तुम्हारा ही बल ठहरा। मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम मुझे चाहती हो, सो मैं देखती हूँ कि तुम्हारी यहाँ कोई गिनती ही नहीं है। क्रोध द्वेष आदि के उद्गार के इस प्रकार कम से कम निकालने की पटुता स्त्रियों में स्वाभाविक होती है, क्योंकि पुरुष के दबाव में रहने के कारण तथा अधिक लज्जा संकोच के कारण ऐसे भावों के वेग को एक बारगी निकालने का अवसर उन्हें कम मिलता है। पृष्ठ 84। रानी पूछती है कि सब लोग कुशल से तो हैं? इसका उत्तर फिर उसी प्रणाली का अनुसरण करती हुई वह देती हैं, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जिन्हें जनेहु देई जुव राजू। भयऊ कौसिलही विधि अति दाहिनी देखत गर्भ रहत उर नाहिन। किसी को क्रमशः अपनी भाव पद्धति पर लाना, थोड़ा बहुत जिसे कुछ भी बात करना आता है उसे भी आता है। जिस प्रकार अपनी विचार पद्धति पर लाने के लिए क्रमशः प्रमाण पर प्रमाण देते जाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार क्रमशः किसी के हृदय को किसी भाव पद्धति पर लाने के लिए उसके अनुकूल मनोविकार उत्पन्न करते चलने की आवश्यकता होती है। राम के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न करने के लिए मंथरा सपत्नी को सामने रखती है, जिसके गर्व और अभिमान को न सह सकना स्त्रियों में स्वाभाविक होता है। सपत्नी के घमंड की बात जी में आने पर कहाँ तक ईर्ष्या न उत्पन्न होगी। इस ईर्ष्या के साथ भरत के प्रति वात्सल्य भाव भी तो कुछ जगाना चाहिए। इस विचार से मंथरा कहती है, पूत विदेशु न सोच तुम्हारे, जानती हहूँ बस नहूँ हमारे। इतना होने पर भी राजा की कुटिलता के निश्चय द्वारा जब तक राजा के प्रति कुछ क्रोध उत्पन्न न होगा, तब तक कैकेयी में आवश्यक कठोरता और दृढ़ता कहाँ आवेगी। कैकेयी के मन में यह बात जम जानी चाहिए कि भरत जानबूझकर हटा दिए गए हैं। इसके लिए ये वचन है, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। इस पर कैकेयी जब कुछ फटकारती हैं और बार बार उसके खेद का कारण पूछती हैं, तब वह ऐसा प्रकट करती हैं जैसा उसको होता है, जो किसी से उसके परम हित की बात कहना चाहता है, पर वह उसे केवल तुच्छ या छोटा समझकर ध्यान नहीं देता। उसके वचन ठीक वे ही हैं जो ऐसे अवसरों पर स्त्रियों के मुख से निकलते हैं, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। फोरई जुगु कपार अभागा, भलेऊ कहत दुख उर रेही लागा। कहीं झूठ फुर बात बनाई, ते प्रिय तुमही करू में माई। हमहू कहब अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिन राती। करी कुरूप विधि परवस दीना, सवा सो लूनिय लहिय सो दीना। मंथरा अब अपने उस भाग्य को दोष दे रही है जिसके कारण वह ऐसी कुरूप हुई। दासी के घर उसका जन्म हुआ, उसकी बात की कोई कुछ कद्र ही नहीं करता। वह अच्छा भी कहती है तो लोगों को बुरा लगता है। विश्वास न करने वालों के सामने कुछ तटस्थ होकर अपने भाग्य का दोष देने लगना विश्वास उत्पन्न कराने का एक ऐसा ढंग है जिसे कुछ लोग विशेषतः स्त्रियां स्वभावतः काम में लाती हैं। इससे श्रोता का ध्यान उनके खेद की सच्चाई पर चला जाता है और फिर क्रमशः उसकी बातों की ओर आकर्षित होने लगता है। इस खेद की व्यंजना प्रायः उदासीनता के द्वारा की जाती है, जैसे हमें क्या करना है, हमने आपके भले के लिए कहा था। कुछ स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है कि किसी का अहित देखा नहीं जाता। मंथरा के कहे हुए खेद व्यंजक उदासीनता के ये शब्द सुनते ही झगड़ा लगाने वाली स्त्री का रूप सामने खड़ा हो जाता है। को कृप हो हम ही का हानि, चिरी छाड़ी अब होब की रानी। जारे जोग सुभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा।